जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता की। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, प्रार्थना करती हूं वो हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं, ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके गीत को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में अपना भी सके। तो फ्रेंड, आप सबको पता कि हम आध्यात्मिक यात्रा की तरफ हम अपने कदम बढ़ा चुके हैं, और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ कर चुके हैं, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें घर बैठे बैठे हम इस आध्यात्मिक यात्रा को तय करेंगे, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, है ना। ऐसी तीर्थ यात्रा, ऐसी आध्यात्मिक यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड्स, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड, भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने से पहले, उनका अध्ययन करने से पहले हमारी तैयारी होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने से पहले ना हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने पहले मिसकंसेप्शंस के बारे में बात की है, है ना, जो हमारे अंदर भक्ति को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर अंधकार होता है, मिसकंसेप्शंस होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब हम गोलोक एक्सप्रेस द्वारा विकसित कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हमने लास्ट फ्राइडे हमने समझा था कंप्लीट हेल्थ कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल हमने समझा। थोड़ा उसकी समरी समझ लेते हैं कि कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली हम सब भाग रहे हैं फ्रेंड्स, किसके लिए, खुश होने के लिए, शांति के लिए हम भाग रहे हैं, और उस खुशी को पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, फिर भी वो खुशी हमें मिलती नहीं है, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता फ्रेंड्स कि कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना पड़ेगा पहले, और कंप्लीटली हेल्दी होने के लिए हमें हेल्थ के 5 कंपोनेंट्स को समझना जरूरी था, है ना। हेल्थ के 5 कंपोनेंट्स हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इन 5 को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम कम्प्लीटली हेल्दी हो जाएंगे और हम कम्प्लीटली हैप्पी हो सकते हैं। और इन 5 हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आधार हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है फ्रेंड्स, हमारी आध्यात्मिक सेहत, हमारी आत्मा की सेहत है। और आत्मा की सेहत, आत्मा की हेल्थ तभी सुधरती है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और हमें पता भी चलता है कि कलयुग में मेजॉरिटी लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ को हमने टोटली इग्नोर किया होता है फ्रेंड्स। हमें पता भी नहीं होता कि हमें कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाग तो हम खुशी के लिए रहे हैं, कितना कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए, घूमते हैं, सैर करते हैं, है ना, फॉरेन टूर्स करते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों के साथ निंदा चुगली भी करते हैं, लेकिन क्या खुश हो जाते हैं हम? सोचो, पूछो क्वेश्चन अपने आप से, कितने दिन की खुशी होती है वो, कितनी घंटे की, कितनी देर की खुशी होती है वो, है ना। तो ज्यादातर लोग दुखी हैं क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ को हम सब इग्नोर करते हैं, और इसके बारे में हमें किसी को भी नॉलेज नहीं है क्योंकि हम दुनियादारी में इतना अटके हुए हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के ठीक ना होने से हमारी मेंटल हेल्थ पुअर हो जाती है फ्रेंड्स, और अगर मेंटल हेल्थ पुअर है तो हमारी फिजिकल हेल्थ ने पुअर होना ही होना है। मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या खाना चाहिए, है ना, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, लाइफ कैसे जीनी है, दुख सुख से डील कैसे करना है। अगर मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ ने पुअर होना ही होना फ्रेंड्स। और अगर ये तीनों ही पुअर है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तो हमारी फैमिली हेल्थ, जो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, उनमें तनाव बने रहते हैं, और अल्टीमेटली हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी फिर बिगड़ जाएगी, है ना। इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमने समझा था। इस टॉपिक को हमने समझा था, कंप्लीट हेल्थ कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल को हम समझ चुके हैं। तो आज हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स गोलोक एक्सप्रेस द्वारा विकसित एक और मॉडल जिसका नाम है अध्यात्म के चार स्तंभ, फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। फ्रेंड्स ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा मॉडल है, जैसे मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो उसको पावर प्लग से चार्ज करना पड़ता है ना, तो उसके बीच में एक तार आती है, चार्जर आता है ना, तो वैसे ही सोल एक मोबाइल फोन है और परमात्मा एक पावर प्लग है, और उसके बीच की तार को अध्यात्म के चार स्तंभ यानी कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार कहते हैं। और अगर हम अपना फोन चार्ज ना करें और बैटरी खत्म हो जाएगी तो कॉमन सेंस है कि अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो हमें फोन को चार्ज करना पड़ता है ना फ्रेंड्स। और अगर आत्मा के लेवल पर कैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों से चिड़े रहते हैं, सारा लाइफ हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, है ना, अपने सुख दुख को डील कैसे करना ये नहीं आता हमें करने, लाइफ बड़ी बोझ लगती है ना, सिर दर्द हो जाती है हमें, हम दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं हमेशा, है ना। तो अगर चिड़चिड़ापन आता है फ्रेंड्स, एंग्जाइटी आ रही है छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे काम भी बड़े लग रहे हैं और हम जल्दी थक जाते हैं, तो इसका सिंपल रीजन है कि सोल लेवल पर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है हमारी। तो बैटरी तो चार्ज करनी है, इसके लिए वो तार, वो चार्जर ढूंढना है। वो तार ही के चार कंपोनेंट हैं, चार विभाग हैं, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। ये चारों चीजें अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो आपकी सोल लेवल पर बैटरी चार्ज हो जाती है, हम सबकी बैटरी चार्ज हो जाती है, लाइफ बड़ी आसान लगेगी। लाइफ वही है जो पहले भी सिर दर्द लगती थी, वही लाइफ आपको बिल्कुल बदली हुई लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी लाइफ। आप हर दिन सोचोगे कि आज के दिन को आप बेस्ट कैसे दूं, आज का दिन कैसे अपना बेस्ट बिताऊं। पास्ट और फ्यूचर से निकल कर फ्रेंड्स आप लोग प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे, और इस मॉडल के प्रत्येक स्तंभ से हम लोग अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, मतलब अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर बनाकर हम लोग अपनी लाइफ को सकारात्मक तरह से जीते हैं और अपने हर कर्तव्य को भगवान की सेवा वाले भाव से जीना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मॉडल हमारे जो आध्यात्मिक, जो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है ना, उसको इम्प्रूव करने में सहायक सिद्ध होता है। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, ये अध्यात्म के चार स्तंभ हैं। सत्संग मतलब एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक जीवन को हम तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी एसोसिएशन जो आपको प्रभु के नजदीक लेकर जाती है, प्रेरणा देती है, आपको जीवन जीना सिखाती है आपको। साधना मतलब अपने मन को ट्रेनिंग देना ताकि मन की जो आदत है ना दुनियादारी में रहने की, वो प्रभु से अटैच हो सके। सेवा मतलब हम अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को छोड़कर कार्य करते हैं जगत कल्याण के लिए, अपने आप को निमित्त मात्र समझकर। और सदाचार का मतलब है गुड बिहेवियर, जब हम अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर से प्रभु की प्रेजेंस हर जगह देखते हैं, दूसरों में भी देखते हैं, नेचर में भी देखते हैं। ये चार चीजें जब हम करते हैं ना, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, तो ओवरऑल हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ जाती है ना। ऐसा समझ लीजिए प्रभु तक जाने का एक तरीका है फटाफट पहुंचने का, है ना। डेली हम एक एक के बारे में गहराई से समझेंगे, तो सबसे पहले हम अध्यात्म के चार स्तंभ में से सत्संग के बारे में बात करने वाले हैं आज, है ना। तो सत्संग फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सत और दूसरा है संग। सत मतलब सत्य और संग का मतलब है साथ, और सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ समय बिताना या सत्य संग। फ्रेंड्स सत्संग एक सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधि है जिसमें लोग साथ में सत्य की बातें, प्रभु के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में बात करना, भजन गान और आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं। सत्संग के माध्यम से लोगों में सकारात्मकता, आत्म सुधार, समाज में आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, मतलब पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है और आपस में आपसी तालमेल बढ़ता है। सत्संग एक पवित्र स्थान माना जाता है फ्रेंड्स, जहां लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, लाइफ की क्लैरिटी मिलती है और पीस ऑफ माइंड मिलती है, इनर पीस मिलती है। फ्रेंड देखो हर एक फील्ड में कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं, है ना। जो स्पिरिचुअल लाइफ के एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनका प्रभु के साथ गहरा कनेक्शन हो जाता है, जिनको सत्य का ज्ञान होता है, वो प्रभु के बारे में जानते हैं, वो बुकिश ज्ञान नहीं अनुभवी ज्ञान होता है उनको, जिनको अनुभव वाला ज्ञान होता है, जिनको अनुभूतियां होती हैं प्रभु के साथ, एक रिलेशनशिप होता है, मतलब वो अनुभव कर पा रहा होता है उस सत्य को, मतलब उसको सत्य का ज्ञान है ना, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट की बात हो रही है ना। तो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि में प्रभु वैसे ही सारथी बन जाते हैं जैसे अर्जुन के सारथी बनकर प्रभु उसका रथ चलाते हैं, और एक बिगनर उसके साथ संग करे, एसोसिएट करे, तो वो अपने अनुभवी ज्ञान को ट्रांसमिट करके उस डिवोटी के साथ उस ज्ञान को पहुंचा सकता है, उस डिवोटी के पास ट्रांसमिट कर सकता है, ताकि उसकी भी प्रमोशन अगले लेवल पर हो जाए। और तो वो एसोसिएशंस आपके कुछ लोग भी हो सकते हैं, या वो एसोसिएशन आपकी बुक्स भी हो सकती है, है ना, या आप उनको चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हो, चाहे आप वन टू वन बेसिस पे फिजिकली उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसे व्यक्तियों को, या फिर आप हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं उनके द्वारा भी ये ज्ञान ले सकते हो, है ना। तो सत्संग का एक ये मतलब भी है कि एसोसिएशन करना स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों के साथ जो थोड़ा एडवांस्ड होते हैं डिवोशन में, चाहे आप अपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो उनकी एसोसिएशन के प्रभाव से, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको भी प्रेरणा मिल जाती है। हम सबको प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों की एसोसिएशन से, है ना। और अगर एक बिगनर भी है तो वो प्रभु के बारे में फिर ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है, प्रभु की भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान मिलता है ना, फिर उसके अंधकार छंट जाता है। जैसे कि पारस मणि को अगर आप लकड़ी के साथ लगाओ, घास से लगाओ, तो वो सोना बन जाती है, वैसे ही सत्संग का प्रभाव होता है फ्रेंड्स। और अगर बिगनर उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो सोना बन जाएगा, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो प्रभु की तरफ खिंच जाएगा। पहले तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम समझे ना, तो मंदिर वगैरह में ही होते थे सत्संग, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हम सत्संग भी कर सकते टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। बिकॉज सत्संग का मतलब है आपने स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों से जुड़ना है, उनकी बातों को सुनना है और अपने जीवन में उतारकर प्रभु से जुड़ने की प्रेरणा लेनी है। और अगर आप वो फिजिकल प्लेटफॉर्म से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर वो इजी है आपके लिए तो आप वैसे कर सकते हो, है ना। या आप टेक्नोलॉजी की द्वारा किसी फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब में किसी स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सन की बात सुनना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वन टू वन बेसिस पे भी कर सकते हो, और यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू किसी स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति की बात सुनना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। मान लीजिए एक स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति वृंदावन में रहता है ना, और एक व्यक्ति अमेरिका में जॉब कर रहा है ना, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अमेरिका से जब 3 साल के बाद छुट्टी लेकर आऊंगा तो 1 महीने के लिए वृंदावन भी जाऊंगा, तो मैं उस स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति के साथ मिलकर सत्संग करूंगा। तो कितने साल निकल गए वो 1 महीना बिताने के लिए, वो 3 साल निकल जाते हैं। और ये जो सत्संग होता है फ्रेंड्स, ये नहीं होता है कि कभी एक बार कर लिया, वंस इन अ लाइफ टाइम, है ना, ये हमेशा ही हमें करना पड़ता है, अपने लाइफ में कल्टीवेट करनी पड़ती है सारी बातें, किसी तरह से भी, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, फेसबुक पे सुन रहे हो, स्काइप पे सुन रहे हो, या अपने धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हो, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, है ना। और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति 3 साल भी निकल गए और वो व्यक्ति ना आ पाए, प्रैक्टिकली उस व्यक्ति के लिए क्या इजी रहेगा कि अगर वो व्यक्ति उन महात्मा जिनकी बातें उसको अट्रैक्ट करती है प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए, लाइफ जीने के लिए, अगर वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड व्यक्ति मान लो सत्संग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, मान लो फेसबुक पर कर रहे हैं या स्काइप पे कर रहे हैं, है ना, या वो यूट्यूब पे अपने वीडियो शेयर करते हैं, तो वो अमेरिका से भी जुड़ सकता है व्यक्ति, अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। क्योंकि भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम अगर वृंदावन नहीं आए मेरे पास, तुम अगर मंदिर में आकर नहीं जुड़े मेरे साथ, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, है ना। तुम टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, भगवान ऐसा कहेंगे, है ना। तो आप जुड़िए प्रभु के साथ जहां से आपको जैसी प्रेरणा मिलती है, जो आपके लिए इजी और प्रैक्टिकली अवेलेबल है। आपके घर के पास ही मंदिर है, आपको वॉक करके जाना आसान लगता है, सत्संग मिलता है आपको वहां पर, है ना, आपको अच्छा लगता है वहां जाना, तो आप वो कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी के द्वारा स्काइप पे सत्संग कर रहे हैं, है ना, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है, अभी हम बेड पे बैठ के भी सत्संग सुन सकते हो, बैठ के सुन सकते हो, सब अपने अपनी श्रद्धा भाव के द्वारा उसको सुन रहे होंगे, कई लोग कॉपी पेन लेके उसको नोट कर रहे होंगे, और कई लोग लेटे होंगे, कई लोग सो ही गए होंगे, और कई लोग साथ साथ में फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे होंगे, फिर वो बाद में कहेंगे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, है ना, या मेरे तो कुछ सुधार ही नहीं हुआ। हमारे पे डिपेंड है फ्रेंड्स कि हमें सत्संग का कितना फायदा उठाना है ना। तो क्या मैं अपनी बात को कह पा रही हूँ और क्या मेरी बात को आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो जो ज्ञान चाहिए उसका ज्ञान आदान प्रदान हो रहा है, यही सत्संग है। भगवान की बातें हम कर रहे हैं, भगवान की दिव्य वाणी को हम समझ रहे हैं इकट्ठे मिलकर, तो यही सत्संग है। तो अभी भी हम सत्संग कर रहे हैं, है ना। सब कुछ देख लो वर्ल्ड में, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो एटीएम की यूजेस हो, सब कुछ तो बदल गया पिछले 15-20 सालों से। तो ऐसे ही हम सत्संग कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, जैसे हम अभी कर रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस में हमारी टीचिंग्स भगवद गीता से लिंक्ड होती है फ्रेंड्स। भगवद गीता को कैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर समझ सकते हो, और कैसे आज की जिंदगी की सिचुएशंस में आपको भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स 5000 साल पहले जो हेल्प करती हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस एफिशिएंसी हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ में कैसे आप सुधार कर सकते हो, है ना। जैसे भगवान की टीचिंग्स 5000 साल पहले हेल्प करती थी, आज भी वो टीचिंग्स फ्रेंड्स आज से 5000 साल बाद भी हमारी लाइफ में हेल्प कर रही है। जो क्वेश्चन अर्जुन के थे 5000 साल पहले, वो क्वेश्चन आज भी हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, है ना। तो वर्क प्लेस में कैसे काम करना है, फैमिली लाइफ में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, चाहे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है ये हम सीख सकते हैं, चाहे आपके बात करने के तरीके में कैसे ठहराव लाना है वो हम सीख सकते हैं, है ना। जो एवरीडे लाइफ में एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि मेरी फैमिली लाइफ इंप्रूवमेंट हो, मेरा एंगर कंट्रोल हो जाए, मैं टाइम को मैनेज कर सकूं, मेरी बुरी आदतें छूटनी चाहिए इसी लाइफ स्पैन में। ये नहीं कि अगली लाइफ होगी उसमें मेरी लाइफ अच्छी होगी और मेरी ये बुरी आदतें भी वहां पे छूटेंगी, मुक्ति मिलेगी मुझे इस जीवन के बाद, कभी कहीं मुक्ति है, मोक्ष है ना। तो भगवद गीता की टीचिंग्स को कोर बनाकर, सेंटर पॉइंट पर रखकर हम लोग टू वे इंटरेक्टिव सत्संग करते हैं, जैसे अभी हम स्काइप पर सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही जो डिवोटीज सत्संग ज्वाइन करते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। अलग अलग टाइमिंग्स पर सत्संग होते हैं स्काइप के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें डिवोटीज अलग अलग शहरों से, इवन अलग अलग देशों से ज्वाइन करते हैं। और गोलोक एक्सप्रेस में 30-40 डिवोटीज है जो पढ़ा रहे हैं भगवद गीता को। तो मेन प्रेजेंटर जो होता है उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। और हम लोग गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर चलते हैं। 30-40 मिनट उस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर आखिरी 15-20 मिनट डिवोटीज ने क्या सीखा, वो टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें, उस पर विचार रखना चाहे वो रख सकते हैं। और जिनको बात करने में हेजिटेशन होती है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मुश्किल लगती है पब्लिक स्पीकिंग, जो कि हम सबको लगती है ना, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर या ऑडियो फॉर्म में अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। तो फिर फाइनली हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए भगवान का थैंक यू करते हैं और सत्संग कंक्लूड हो जाता है। और भगवद गीता के अलावा, चाहे वो कबीर दास जी के दोहे हों, या तुलसीदास या रहीम जी के दोहे हों, भागवतम का कोर्स हो, रामायण का कोर्स हो, उनको आप YouTube पर देख सकते हो गोलोक एक्सप्रेस टाइप करके। बीच बीच में कई टॉपिक्स क्लियर किए जाते हैं, चाहे वो मिसकंसेप्शंस हो, मॉडल्स हो, है ना। तो आप लोग YouTube पर गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। सिंपल भाषा यूज होती है जिसको सब समझ सके, जो भी हमारी एवरीडे लाइफ की जो लैंग्वेज है हम उसी भाषा में बात करते हैं ताकि सब लोग समझ सके। वो भी डिवोटी ये ऑडियो सुन रहा है, चाहे वो आप लोग सुन रहे हो तो आप किसी को सुनाना चाहते हो, या फिर पॉडकास्ट पे जो कोई हमें सुन रहे हैं और वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ सत्संग अटेंड करना चाहें, तो वो हमें ईमेल के थ्रू या फोन नंबर पर बात कर सकते हो। तो हमारे टीम मेंबर से कोई डिवोटी आपको ये सारी बातें समझा देगा, लेकिन साथ में अपना कंप्लीट नेम और फोन नंबर भी आपको बताना है। तो सत्संग के अलग अलग टाइमिंग्स फ्रेंड्स अवेलेबल है हमारे गोलोक एक्सप्रेस में। तो अगर पॉडकास्ट से आप में से कोई सत्संग करना चाहे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हफ्ते में चाहे आप एक बार करना चाहो, दो बार करना चाहो, या हफ्ते के सातों दिन आप करना चाहे तो वो आप ऑप्शन ले सकते हो। जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल लर्निंग वाला सत्संग है हफ्ते में 3 बार होता है, वेडनेसडे टू फ्राइडे, है ना। तो अगर आप 3 दिन करना चाहते हो तो आप 3 दिन कर सकते हो। अगर हफ्ते के 7 दिन आप सत्संग करना चाहते हो तो गोलोक एक्सप्रेस में ये भी ऑप्शन है। यूट्यूब पे आप गोलोक एक्सप्रेस टाइप कीजिए तो हफ्ते के 7 दिन वहां पे सत्संग रहते हैं। जैसे हमारा सत्संग स्मार्टफोन पे होते हैं ना, तो ट्रेवल करते वक्त, ऑफिस जाते वक्त या आते वक्त, एयरपोर्ट पर फ्लाइट की वेट कर रहा होता है ना, या ट्रेन की वेट कर रहा है तो आप सत्संग ज्वाइन कर सकते हो। कोई हॉलीडे पर जाता है फैमिली के साथ तो आप वहां पे भी अटेंड कर सकते हो। 1 घंटा मुझे सत्संग सुनना ही सुनना है ना, क्योंकि फिजिकल लेवल पर तो आप बोलोगे कि मैं कहीं जा रही हूँ है ना, कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं सत्संग में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन जब सत्संग स्काइप पर होना है तो इट डजंट मैटर कि सत्संग इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बाहर हो, आप घर में आराम से बैठकर या लेट कर भी सत्संग कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप ना हो फिर ही सत्संग अटेंड करना है आपको, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल आई है। और मुझे भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इसने किया था कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे घर बैठे बैठे भगवद गीता सुननी है। मुझे बस बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे को कि नहीं लाइफ में मुझे भगवद गीता तो एक बार सुननी है, मुझे एक बार सुनने के लिए मैं जुड़ी थी। तो आज मुझे पता नहीं मैं कितनी बार सुन ली है भगवद गीता, लेकिन हर बार जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक नई टीचिंग समझ आती है। एक बार सुनने के लिए मैं जुड़ी थी फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं सोच भी नहीं सकती कि भगवद गीता के बिना मैं अपनी लाइफ जी भी सकती हूँ। मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल है ये, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में एक व्यक्ति इतना उलझा हुआ है फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है और ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं लोग बड़े शहरों में खासकर। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में ये बताया गया है सत्संग को फ्लेक्सिबल रखा जाए और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए तो ये इजी हो जाता है सबके लिए। जो हम फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फिल्में देखते रहेंगे, टीवी सीरियल्स देखते रहेंगे, न्यूज को बार बार सुनते रहते हैं, नेगेटिविटी अंदर गेन करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम जब अच्छी बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, अंदर अच्छी चीजें घुसाएंगे तो फ्रेंड्स अपने आप ही सुधार तो होना ही होना ना। फिर हम अभी हम करते हैं उल्टी चीज है, नेगेटिविटी में पड़े हुए हैं, नेगेटिव चीजों को अंदर घुसा रहे हैं है ना। तो हम उस टाइम को जब वहां पे हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं है ना, सोए रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या फालतू निंदा चुगली में बिजी रहेंगे, उस टाइम में हम सत्संग सुन सकते हैं। अभी तो आपने टाइम निकाला ही है ना अपने दिन के बिजी शेड्यूल में से है ना, अभी आप सोते होंगे या फिर आप टीवी देखते होंगे या आप किसी से बात करते होंगे या आप कहीं पे जाते होंगे घूमने, तो आपने टाइम निकाला ना, आपने इसको प्रायोरिटी पे रखा ना कि मुझे नहीं सत्संग सुनना है ना। तो ये प्रायोरिटीज फ्रेंड्स हमें डिसाइड करनी है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब ही हम समय बनाएंगे है ना। तो आप घर में भी टाइम निकाल सकते हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो 1-2 घंटे का टाइम है आपके पास तो आप इस टाइम का लाभ उठा सकते हो। क्योंकि जो जॉब पे होते हैं ना फ्रेंड्स बड़े शहरों में, उनका ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो वो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे उलझने के बजाय वो सत्संग अटेंड कर सकते हैं। उस टाइम में आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो, आपको स्पेशल टाइम नहीं बनाना पड़ा है ना। गोलोक एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्टें पड़ी हुई है फ्रेंड्स, या वर्ल्ड में कितने सारे अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं तो आप उनको भी सुनते रहो यूट्यूब वीडियोस पे, तो वो भी सत्संग ही है। तो आजकल तो सब बहुत ही सिंपल हो गया फ्रेंड्स, भगवान ने बहुत सारे रिसोर्सेज हमें देकर रखे हुए हैं। तो आज हम सत्संग अटेंड करने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है सत्संग से जुड़े रहने की, इसको हम समझेंगे है ना। चाहे आपको गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर करना है या आपको कहीं भी करना है फिजिकल लेवल पे है ना, तो हम जनरल सत्संग का महत्व समझते हैं आज के सत्संग के लाभ क्या होते हैं है ना। तो पहले तो फ्रेंड्स हर एक इंसान का जो मन है ना उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दी होती है, दी भी होती है तो बहुत उल्टी ट्रेनिंग दी होती है, इसलिए वो उल्टा ही सोचता है, नकारात्मक ही सोचता है, नेगेटिव ही सोचता है ना। तो सत्संग का पहला प्रभाव ये होता है कि आप अगर आप रेगुलरली सिंसेरिटी से सत्संग लगाते रहोगे तो आपके मन की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, आउटलुक बदल जाएगा आपका जीवन देखने का है ना। जहां आप हर चीज में कमी देखते थे, गलती देखते थे, नेगेटिविटी देखते थे, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ने मुझे इस नेगेटिव सिचुएशन में भी डाला है तो कुछ सीखने के लिए डाला है। अपने कंफर्टेबल माहौल में मैं कुछ नहीं सीख पा रही थी इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नेगेटिव सिचुएशन में डाला ताकि मैं कुछ सीख पाऊं, आप ये सब सोचोगे। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा सत्संग करने का यही है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी है ना। सब कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो हमें कोई बताता नहीं है ना। क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स कि आपने सुना या आपने कहीं मिल रहा है तो आपने खरीद लिया। जब आप सत्संग अटेंड करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, नेचुरली आप पॉजिटिव थिंकर हो जाओगे, नेगेटिव आप सोच ही नहीं पाओगे, आपके अंदर आएगी नहीं नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी निकलेगी और कुछ नहीं। और आसपास के लोग भी आपसे मिलकर पूछेंगे भी आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि आप मतलब आपकी सोच ही अलग होगी, आपकी बातचीत का वे ही बदल गया। अभी क्या होता है, अभी तो हम खुद ही नेगेटिव होते हैं, दूसरों को भी नेगेटिविटी ट्रांसमिट करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। कितने लोग बदल पाते हैं हम लोगों की इस नेगेटिविटी से, है ना। तो एक स्टोरी से समझते हैं इसको, आपने भी सुनी होगी, बहुत ही कॉमन स्टोरी है फ्रेंड्स, है ना। रत्नाकर एक डाकू था, है ना, लूटता था वो लोगों को, जब भी यात्री चलते थे रास्ते में तो उनको लूटता था, तो कई बार तो उनको लूट के मार भी देता था। तो एक बार ना नारद मुनि वहां से क्रॉस हुए, तो नारद मुनि से जब रत्नाकर डाकू को सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो नारद मुनि रत्नाकर डाकू को कहते हैं कि तुम्हें राम राम भगवान का नाम लेना है। तो रत्नाकर डाकू राम राम की जगह मरा मरा बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, तो वो राम 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 बोल रहा है फास्ट फास्ट, तो मरा मरा बोलना शुरू कर देता है राम राम की जगह, है ना। तो भगवान इतना खुश हो जाते हैं तब भी कि वो आदि कवि वाल्मीकि जी बन जाते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। और हम कितने सम्मान से उनको देखते हैं, क्योंकि सत्य का संग मिला उनको, सत्संग मिला। तो ये प्रभाव होता है कि एक डाकू भी वाल्मीकि जी बन जाते हैं, है ना। मतलब आपकी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब आपके अंदर इतनी असीम पोटेंशियल होती है, हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है फ्रेंड्स, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं होती, है ना। तो हमने सुना होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो दुनियादारी के उल्टे सीधे लोगों की वजह से हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं कुछ सीखे होते तो हम क्या सीख लेंगे उनसे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल करण कितना अच्छा था, लेकिन दुर्योधन का संग करता रहा, तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो ये संगत से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है फ्रेंड्स, है ना। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बुरी आदतों से जूझ रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की हो, ड्रिंक्स की हो, नशों की हो, नशे किस भी लेवल के हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव हैबिट्स का शिकार होगा हम या हमारे आसपास के लोग। किसी को टीवी से बहुत ज्यादा एडिक्शन होगी, है ना, किसी को शॉपिंग से बहुत ज्यादा एडिक्शन होती है, किसी को निंदा चुगली से बहुत ज्यादा एडिक्शन होती है। तो ऐसी बहुत सारी गलत आदतें हैं, अलग अलग आदतें हैं, जिससे हम खुश नहीं रह पाते, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। ये बुरी आदतें पता तो हम सबको होती है, थोड़ी हमें पता नहीं होती है, लेकिन उन बुरी आदतों से पीछा कैसे छुड़ाना फ्रेंड्स, हमें वो पता नहीं होता। और आपने कभी सोचे कि क्यों नहीं हम छुड़ा पाते उन बुरी आदतों से पीछा, हमें पता होता है ये पर्टिकुलर ये वाली आदत मेरे में है, मान लो गुस्से का संस्कार है मेरे अंदर, है ना, मुझे पता है ये वाला गुस्से का संस्कार मेरे लिए अच्छा नहीं है और मेरे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी। कैसे, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है कि मैं इसको मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे क्या लगता है, यार उसने मुझे गुस्सा दिला दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, अगर वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसी बात नहीं करता तो आज मुझे ये गुस्सा नहीं आता। अरे उसकी गलती है कि उसने मुझे इतना कुछ बोल दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी उस बदले में उसको बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन पहले तो उसने बोला मुझे। हम ऐसे बिहेव करते हैं, है ना। तो ये बुरी आदतें हम सब में होती हैं फ्रेंड्स, और हमें पता भी होती हैं, लेकिन कैसे वो विल पावर क्रिएट करें कि हम उससे बाहर निकल सके। तो यहाँ पे सत्संग का रोल आता है फ्रेंड्स। आप सत्संग करते रहोगे, अच्छी बातें सुनते रहोगे, तो भगवत कृपा से आपको विल पावर मिलेगी, आपके अंदर का अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा, विल पावर क्रिएट करेंगे भगवान, विल पावर आएगी तो आप अपने आप बुरी आदतों से निकल पाओगे फ्रेंड्स। और ये 100% ट्रू है फ्रेंड्स, ये बात। आप सत्संग सुनते रहोगे नित्य निरंतर भगवान की बातों को सुनते रहोगे, तो अपने आप जो हमारी नेगेटिव हैबिट्स होती है हम उनसे बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जिंदगी में मेजोरिटी लोगों के पास फ्रेंड्स जिंदगी जीने की कोई डायरेक्शन नहीं है, है ना। उनको क्या लगता है कि बस डिग्री लेकर जॉब कर लेंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, है ना, उसके बाद एक व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। उनको समझ आ जाता है कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है किसी के पास। समझ तो आ जाता है कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, लेकिन समझ ये नहीं आता मैं क्या गलती कर रही हूँ और मुझे इन नेगेटिव हैबिट से निकलना कैसे है, मुझे कैसे डील करना है इस लाइफ की पर्टिकुलर सिचुएशन को, है ना। तो सत्संग का एक इम्पोर्टेंट लाभ ये होता है कि आपको जीवन जीने का लक्ष्य क्या है वो पता चल जाता है, कि आप ट्रू सेंस में कौन हो, आप यहाँ क्यों आए हो, हायर गोल्स की क्लैरिटी मिलती है, और आपको बैलेंस करना आता है, प्रभु के साथ जुड़ना आता है, हायर गोल्स क्या है, इनर पीस और हैप्पीनेस कैसे अटेन करनी है, और साथ साथ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ड्यूटीज को डिवोशनली कैसे करना है ये समझ आता है ना। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, तो इस रास्ते में ये सिखाया जाता है कि श्रम, अपना एंडेवर, अपना प्रयास करना, अपनी कोशिश करते रहना, सिंसेरिटी के साथ करना, एक पंख वो हो गया, और दूसरा पंख है भगवान की कृपा का पंख, है ना। तो ऐसे दोनों पंख होंगे तो आप मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो और साथ साथ में भगवान से भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हो, है ना। मतलब मटेरियल लाइफ को भी आप साथ साथ में इंजॉय करते करते भगवान से भी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हो, है ना। तो सत्संग का भी ये लाभ है कि फाइनल आप परमानेंट की तरफ बढ़ जाओगे, साथ साथ में जो ये लाइफ की जर्नी है, अपनी लाइफ में जो हम चल रहे हैं, ये भी हम सत्संग से हम सीख जाएंगे कि लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में हर पल एंजॉय कैसे करना है, थैंकफुल कैसे रहना है, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है लाइफ में, और अपनी ड्यूटीज को बोझ ना समझकर सेवा भाव से कैसे करना है। तो ओवरऑल हम सब एक बेटर इंसान बन जाते हैं और बेटर समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति यही चाह रहा फ्रेंड्स कि मैं बेस्ट करूं लाइफ में, लेकिन करना कैसे वो हमें पता नहीं है। और वो बेस्ट ला सकता है हमें सत्संग से। सत्संग से विकारों का नाश होगा और आप निखर कर प्रभु कृपा से बाहर निकलोगे। जब आप अपने बेस्ट पे आओगे भगवत कृपा से, तभी आप एक ब्यूटीफुल सोसाइटी का हम सब मिलकर फ्रेंड निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें सबको मिलकर अपने जीवन में सत्संग एडॉप्ट करना है। आपके घर के पास कोई मंदिर है तो आप वहां पे लगा लीजिए, आप YouTube पर कीजिए या आप हमारे साथ Skype पर हमारे साथ कीजिए, बट सत्संग हमें जरूर करना है, बिकॉज सत्संग ही हमें जीवन जीने का तरीका बताएगा और हमें एक्चुअली खुश कैसे रहना है, इनर पीस कैसे प्राप्त करनी है, ये हमें सिखाएगा। श्रीमद भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स आप रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल।
हाँ जी पूजा जी।
हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक्स मोना दी, थैंक यू सो मच। आज का जो आपने टॉपिक करवाया आध्यात्मिक चार स्तंभ, ये भी इम्पोर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था। आज के सत्संग से मेरी ये लर्निंग बनी है, जो भी मैंने सुना, प्रभु से डायरेक्ट और उन तक पहुंचने का सबसे इजी वे है सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार। ये है हमारे आध्यात्मिक चार स्तंभ। आज आपने हमें सत्संग के बारे में बताया। सत्संग मीन्स महान संतों की वाणी को सुनना और उनकी सुनी गई बातों को समझना और सत्य की अनुभूति होना। सबसे पहले हमें तो एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, तभी हम सत्संग में सुनी गई बातों को समझ पाएंगे। पहली बात तो ये कि हमें सत्संग शब्द का रियल मीनिंग ही नहीं पता। मैं अपने बारे में ही बताती हूँ, मेरी नॉलेज में सत्संग का मतलब वो जगह होती है जिधर कुछ लोग बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, जैसे मंदिर में हो या किसी के घर। सही में मेरी पहले यही सोच होती थी कि सत्संग का मतलब यही है, लेकिन अब मोना दी के थ्रू भगवद गीता से जुड़ने के बाद मुझे सत्संग का एक्चुअल मीनिंग पता चला। सत्संग का एक्चुअल मीनिंग है अपने ईष्ट, अपने परम पिता प्रभु श्री हरि के बारे में सुनना और उनके बारे में जानना। सत्संग सुनने का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम सत्संग में सुनी गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, हमारी विल पावर भी स्ट्रांग होने लगती है और खुद की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ऐसा करने की हमेशा कोशिश की है जब से मैं इस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी हूँ। ज्यादा तो नहीं, बट अपने अंदर की कुछ कमियों को जानकर उनको दूर करने की कोशिश की है और कुछ में सक्सेसफुल भी हुई हूँ। सच बोलूं तो सत्संग का एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि हमें अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को पहचाने, समझें और उसकी ओर बढ़े। और हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है श्री हरि से प्योर एंड डायरेक्ट कनेक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही पॉसिबल है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स पूजा जी, एज ऑलवेज बहुत ही अच्छी तरह से आपने सत्संग को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल, पहले हम सब भी सत्संग ऐसे ही अटेंड करते थे, कभी कर लिया। मैं तो वैसे यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस बारे में। किसी घर वाला होता तो ठीक है, वो चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे सत्संग करते हैं ना कि मंदिरों में जा रहे हैं, किसी घर जा रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ रहता है दूसरों की निंदा करने में या किसी की ने क्या पहना है, खाने पीने में, इन सब चीजों में, बाहरी चीजों में ध्यान रहता है। लेकिन सत्संग का रियल मीनिंग मैंने भी अभी समझा कि एक्चुअली सत्संग का मतलब क्या होता है ना। सत्संग का मतलब यही होता है कि भाई अगर हम किसी बच्चे से भी कोई चीज सीख पा रहे हैं तो वो भी सत्संग है ना। चाहे बच्चे से सीख रहे हैं, चाहे हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, है ना। लगातार सीखने की प्रक्रिया ये सत्संग है फ्रेंड्स, और सही चीजें सीखने की प्रक्रिया है ना। फालतू चीजें दुनियादारी में रहकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, मनगढ़ंत जीवन जी है ना, लेकिन सत्संग करने से हमें समझ आ जाता है एक्चुअली हमें सुनना है तो सुनना भी क्या है, फालतू चीजें सुननी क्यों है ना। कई चीजें हमें समझ आती है, तो जब हम सत्संग ही नहीं करेंगे, कुछ सुनेंगे ही नहीं, चाहे हम बुक्स के माध्यम से सुने, चाहे हम किसी को हम सुन रहे हैं वन टू वन बेसिस पे, या हम यूट्यूब पे किसी को सुने, है ना, मतलब किसी भी माध्यम से अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें अंधकार दूर होगा कैसे? अगर हम पहले के जीवन से अपने को कंपेयर करें तो पहले हमारी लाइफ में ये सब चीजें थी ही नहीं, बस फालतू बातें कर ली, सो गए, इधर उधर की गप्पे मार ली, है ना, खाना बना लिया, बस इतनी लाइफ, और फिर लाइफ की प्रॉब्लम से दूर होती नहीं। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, तो उनको डील करना हमें आता नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं होता, उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं, है ना। तो सत्संग से हमें समझ आती है चीजें, की बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है। तो जो भी राइट नॉलेज आपको मिल रही है उसका मतलब ही सत्संग है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा। वैसे तो आप बहुत अच्छे सत्संग कराते हो, बड़ा आनंद आता है। आपकी आवाज में इतनी कशिश है कि हर बात दिल दिमाग में छाई रहती है। आज हमने अध्यात्म के 4 स्तंभ के बारे में आपसे पढ़ा, जिसमें मेन था सत्संग। फ्रेंड्स, ये 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये भगवान की तरफ आगे बढ़ने का सुपर पॉजिटिव तरीका है। इन चारों में सबसे पहला है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत प्लस संग। सत मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ या ईश्वर, संग मीन्स एसोसिएशन। कोई भी एसोसिएशन जिससे आप भगवान की तरफ जिससे हमें भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वही है सत्संग। ये मंदिर में भी होता है। पहले हम मंदिर में जाते थे तो उसे ही सत्संग मानते थे। अब घर में बैठ के YouTube पर, Facebook पर, WhatsApp पर, कहीं भी बैठ के हम सत्संग सुन सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पे भी हम अपने फ्रेंड्स को भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो वो भी सत्संग है। और अगर एक व्यक्ति मंदिर में जाकर सत्संग में बैठकर इधर उधर की बातें करके आ जाता है तो वो सत्संग नहीं है। कोई भी एसोसिएशन जो हमें भगवान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है, वही सत्संग कहलाता है। इतना ही मैंने आज के सत्संग से जाना। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज डोली जी। आपने बहुत अच्छी तरह से सत्संग को, अध्यात्म के 4 स्तंभ का पहला पिलर है जो, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। तो सत्संग से एक्चुअली हमें सही गलत की पहचान होती है, है ना, इंस्पिरेशन मिलती है, है ना। जब हम बाकी डिवोटीज को सुनते हैं, जैसे हम अपने सत्संग की बात करें तो हम कितना कुछ सीखने को मिलता है। जो डिवोटीज अपनी बात करते हैं, अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, है ना, तो वो सत्संग को सुन के ही अपनी लर्निंग शेयर करते हैं ना, उन चीजों से सीखते हैं, तो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, हम सबको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कैसे हो पाई? सत्संग से ही ना। सत्संग ही सुने हमने, गोलोक एक्सप्रेस के, भगवद गीता के सत्संग सुने, तो उससे हमारा हृदय परिवर्तित हो गया घर बैठे बैठे। और मैं बहुत ये बात करती हूँ कि देखो, मैं कहीं नहीं गई, लेकिन घर बैठे बैठे हम अपना एक अच्छा जीवन जीना शुरुआत होगी हमारी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया डॉली जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स, हरी बोल।
अच्छा, हरी हरी बोल मोना दी एंड एवरीवन। आज का सत्संग हमेशा की तरह आनंददायक था। तो मोना दी, जो आपने गोलोक एक्सप्रेस के 4 पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जो बताया है, उसे मेरे जो है क्या कहते हैं, विचारों का जो दायरा है ना, वो और भी बढ़ गया है। आज जैसे आपने बताया कि हम वैसे संसार में हमारा जो मन है ना, या माया से जकड़ा हुआ जो हमारा क्या कहते हैं जीवन है ना, वो हमेशा आसपास के डिप्रेशन से ढका रहता है कि पता ही नहीं लगता हमें सुख दुख में कैसे रहना है। जो है ना, दुख सुख की भावनाओं से हमें दूर होने के लिए हमें अपने आप को एक सुपर पावर के साथ अटैच करना बहुत ही जरूरी है। उसी के कारण हम जो है स्पिरिचुअल, या थोड़ा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पिरिचुअली थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। जिस तरह हमें अपने आप को प्रभु से साथ जुड़कर एक अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। जो आपने स्पिरिचुअल लाइफ के जो 4 पिलर बताया ना, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, जिस पिलर के बारे में डिस्कस हुआ है वो है सत्संग। सत्संग का जो मतलब है वो क्या है? सत्संग का मतलब एक अच्छा साथ, एक अच्छी कंपनी, एक ऐसी एसोसिएशन जो हमें प्रभु के नजदीक लेके जाती है ना। इससे हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आती है, हम इनर पीस को एक्सपीरियंस करते हैं, और सत्संग के द्वारा हम एक ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं जिसने स्पिरिचुअली कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया होता है और जो हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाने में सहायक भी होता है, जिससे हमें उनके जो ज्ञान से हमें कुछ सहारा मिलता है और हमें प्रभु के साथ जुड़ने का मौका भी। सत्संग से हम अपनी बुरी आदतों से भी छुटकारा पा लेते हैं, अपने आचार विचार में भी सुधार हमारे आता है और पारिवारिक स्थिति को भी सुधारने में सहायक होता है। अब जो सत्संग के जो है ना, वो लाभ क्या है, उसके लाभ क्या है? सबसे पहला जो एक बताया है कि जो मन की जो गति होती है ना, वो नेचुरली जो है ना, जो मन हमारा वो नेगेटिविटी की ओर जाता है हमेशा। एक जैसे कहते हैं ना, ऊपर से जो पानी बहता है वो हमेशा नीचे की ही तरफ जाता है, इसी तरह मन की भी स्थिति ऐसी ही है कि वो हमेशा ही नेगेटिव या जो इजी जो चीजें हैं ना, उनको अपनाने में अक्सर रहता है। हमेशा यही सोचता है कि जो अरे यार नींद अच्छी है ना, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सो जाओ। तो हमें जो सत्संग है ना, वो हमें पॉजिटिविटी में हमारी जो गलत आते हैं ना, उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है और हमें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाता है। हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। यदि हम पॉजिटिव होंगे तो हमारी लाइफ का आउटलुक भी बदल जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ नेगेटिव होता है, परंतु फिर भी हम कुछ हद तक उसको पॉजिटिविटी में हैंडल करने में सफल हो जाते हैं। और मानो यदि कभी सफल नहीं भी हो पाते तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं ना, उनसे कुछ हद तक बचने में सफल अवश्य होंगे। सत्संग से हमें विल पावर मिलती है, जिसे बुरे टाइम में आप डोलते नहीं, घबराते नहीं, है ना। ऐसे लगता है हमेशा हम जैसे इस एक सुपर पावर से जुड़े हैं, एक भगवान से जुड़े हैं, कि ठीक है भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। सत्संग से मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जीवन में बहुत से विकारों का नाश होता है और हम एक अच्छा समाज बनाने में भी सहायक होते हैं। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुली आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि सत्संग क्या, मीनिंग क्या है, सत्संग के बेनिफिट्स क्या हैं। सिंपल मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब जब भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग सुने, है ना, इससे पहले मैं यूट्यूब के सत्संग मतलब के वो स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनती रहती थी। कोई भी अच्छे जो लीडर्स मुझे लगते हैं तो उनकी मैं बातें सुनती रहती थी, है ना। लेकिन भगवद गीता जब मैंने पढ़ना शुरू की ना, तो इसका आनंद ही डिफरेंट लेवल पे मुझे ले गया। मैं ये नहीं बोल सकती कि खाली मैंने भगवद गीता सुनी और मतलब कि एकदम में मेरी स्पीड फास्ट होगी, है ना। जैसे मतलब लगातार इसमें लगे रहना, सत्संग मतलब लगातार अच्छी बातें सुनते रहना तो हो ही नहीं सकता। भगवान के साथ एक्चुअली जब ट्रू कनेक्शन होता है ना, रियल कनेक्शन जब होता है ना, पहले तो हम बुकिश नॉलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, भगवान के आगे ट्राई बुक्स पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है बस कि भगवान के आगे सच्चे बनना में क्या, देखो भगवान मैं तो आ गया आपके पास, अब आपने मेरी डिजायर्स पूरी करनी है जो मैं विश लिस्ट लेके आई हूँ आपके पास, है ना। पहले हम ऐसी भक्ति करते थे, तो अब हमें क्या होता है कि हम भगवान के पास चाहे 2 मिनट भी जाके आए ना, तो हमें लगता है कि कोई ऐसी डिजायर्स नहीं होती, है ना। ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, भगवान वेट कर रहे हैं, तो मेरे को जाना है वहां पे, मिलना है उनसे, है ना। तो वो मतलब वो ही बदल गया सोचने का ढंग, है ना। तो मतलब घर बैठे बैठे सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा। मैं कोई ऐसे मंदिरों में ऐसे कोई भारी भरकम सत्संग अटेंड नहीं किए, मैंने किसी के घर में जाके सत्संग अटेंड नहीं किए, सिर्फ घर बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से हमने सत्संग सुने, है ना, चाहे गोलोक एक्सप्रेस के सुने या दूसरे स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना। तो मतलब लगातार सुनते रहने से हमारा मन शांत हो जाता है, है ना। रियल नॉलेज तक हम पहुंच जाते हैं कि हमें करना क्या है और क्या सुनना क्या है ना, और चीजें समझ भी आ जाती है। फिर पहले तो सिर के ऊपर से चीजें जाती थी, कई चीजों कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे, अब मैं ये नहीं बोलती पूरा ही समझ आ गया, सब कुछ आ गया, नहीं, धीरे 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 हम ये समझने की प्रक्रिया में चले हुए हैं। और ये सीखने की प्रक्रिया मुझे लगता है चलते रहना चाहिए, और सीखते रहना ही जिंदगी है, लगातार सीखते रहना ही जिंदगी है। ये हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि हम मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया और मुझे बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ ऐसा जो फ्रेंड्स हमें नहीं आता, बहुत कम ज्ञान है हमें, बहुत कम चीजें हमें पता है ना। तो हमें बस भगवान से ये प्रेयर करनी है कि जो राइट नॉलेज है हमें मिलती जाए और हम आपके रास्ते में नित्य निरंतर सिंसियरिटी से बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच कुमा जी। हाँ जी ममता जी, आप बात कर सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। आज का सत्संग का टॉपिक बहुत ही सुंदर, और जो सबने, पूजा जी ने, डॉली दीदी ने और कुमुद जी ने जो रिव्यूज दिए हैं, सच में माइंड ब्लोइंग रिव्यूज, तो उनको सुन के मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह में कोई वर्ड्स ही नहीं रहेगी। तो मेरी आज के सत्संग से लर्निंग बनी है कि आज आपने हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म के जो 4 स्तंभ बताए हैं, 4 पिलर जो उनमें था, फर्स्ट है सत्संग, तो उसके बारे में आज हमें बताया। तो सच में मोना जी, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि अगर आपने हमें सत्संग से जोड़ा नहीं होता तो आज हम ये बातें सत्संग बैठ के कर ही नहीं रहे होते। और सत्संग इसका मतलब मैं भी पहले यही समझती थी, जब आपने मुझे भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला तो सत्संग के लिए बोला तो मुझे ये था कि कहीं जाना पड़ेगा और ये सत्संग जैसे मंदिरों में सत्संग होता है, भजन कीर्तन किया, खाया पिया और वापस आइए, तो कैसे होगा ये सत्संग। सच में जब मैंने सत्संग पहले मेरे माइंड में यही पूरा बना हुआ था कि ये ऐसा ही सत्संग होगा कोई, तो जब धीरे धीरे मैंने सेशन अटेंड किया, फिर 2 महीने 6 महीने मतलब जब सत्संग सुना तो सुन के जो एक अंदर से एक लाइट बोलते हैं ना, भगवान हमारे अंदर से लाइट जगाते हैं, तो सच में जैसे मैं तो अपना यही कहूँगी, मेरी तो ऐसे ट्यूबलाइट जली ना, मुझे बोलने में भी सच में हंसी आ रही है कि सही पता चला कि सत्संग के मीनिंग क्या होता है सही मायने में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कुछ ऐसी बातें थी जो हमने सीखी नहीं होती हैं मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम माया में रह के अपने मतलब रहते हैं, तो हमें किसी बात जो अच्छी बात भी होती है उससे भी ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी हैं रहते हैं हम। तो बहुत ही सत्संग में आने से इतनी अच्छी बातें, मतलब भगवत गीता का सत्संग और भी घर बैठे, मतलब ऑनलाइन सत्संग का था कि कैसे सुनना है, जो नॉलेज मिलती है हमें घर बैठे कि हमें कैसे सत्संग को अटेंड करना है, फोन मतलब स्काइप को स्काइप पे कैसे सुनना है, कैसे चलाना सीखा हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से घर बैठे, तो ये भी हमें एक सीखने को मिला। तो वही आप ही बता रहे हैं कि हमें सीखना है हर चीज, छोटी से छोटी बात को सीखना है, हमें अपने आप को ये नहीं बताना है कि हमने कुछ सीख लिया तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है। तो सच में ऐसी बातें हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते यही है कि सत्संग में भगवत गीता के माध्यम से आज मैं कहीं और मटेरियल वर्ड की कोई बात कर रही होती हूँ ना, हो रही होती है, तो मैं उन सबको आज भी यही बोलती हूँ कि पहले आप भगवत गीता तो एक बार पढ़ो। तो ये बातें आज मैं जो बोल पा रही हूँ ना, इस सत्संग के माध्यम से ही बोल पा रही हूँ। अगर मैं सत्संग से नहीं जुड़ी होती तो आज मैं ये बातें मटेरियल वर्ड में रहती हूँ और लोगों से नहीं कर पा रही होती। तो सच में मोना जी, आज का सत्संग का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, सही मायने में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू ममता जी, और अब आपका भी समझने का और बोलने का मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इन चीजों में, है ना। तो ये सब हम सब में कमियां थी ना, समझ आती थी चीजें, बोलना तो फिर भी अलग बात है कि बोल भी नहीं पाते थे, है ना, क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में इतना उलझे होते हैं ना कि हमें ये सब बातें हमें बिल्कुल सिर के ऊपर से ही जाती हैं, है ना। और कुछ सीखना भी चाहें तो लोग हमें इस चीज में जाने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते, हमारे पास इतनी मतलब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती है। ये तो जैसे होता है ना कि भगवान है, जैसे घर बैठे ही, जैसे घर में आए थे मेरे निधि मामी जी ने जोड़ा था मुझे गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग में, तो उनका बेटा यहाँ पे जॉब करता था, तो बाय चांस वो पूना में आए तो हमारे घर आए थे मिलने निधि मामी, जो हमारे ग्रुप में भी आए थे, है ना। तो उन्होंने पूछा मोना भगवद गीता पढ़नी है, मैं बोला भगवद गीता हाँ जी मैंने पढ़नी है, मैं कहाँ पे पढ़नी है, मुझे ये नहीं समझ आया, मैं तो पूना में रहती हूँ, मैं चंबा में कैसे जाऊंगी, मुझे तो ये था। बोलते नहीं नहीं हम स्काइप के माध्यम से सत्संग करते हैं मोना, तो भगवद गीता, ऐसे उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया गोलोक एक्सप्रेस के बारे में, तो तुमने पढ़नी है, तो मैं मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, मुझे भगवदगीता पढ़नी है, भगवदगीता पढ़नी है ना। और वही कि हम लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते ही हैं, हमें अपने स्क्रिप्चर्स का कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि मोना तुमने पढ़नी है, मैं बोला हाँ जी पढ़नी है। तो इस तरह से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, भगवदगीता से जुड़ी, है ना। तो मतलब कि और उसके बाद कितना कुछ सीखा, जैसे ममता जी बोल रही हैं स्काइप कैसे डाउनलोड करना, ये नहीं आता था मुझे, उन्होंने ही मुझे सामने से फोन करके मुझे बताया कि ऐसे से मोना डाउनलोड करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे स्काइप भी डाउनलोड करना सिखाया। ये हाल थे हमारे, ऐसे होते हम लोग, है ना। और फिर भगवदगीता को भी कोई समझ थोड़ी आती थी, सिर के ऊपर से निकल गई 1-2 रीडिंग्स तो, है ना, धीरे 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 चलते रहे अंतर नोट्स बनाती रही मैंने। ये मैं इसलिए आपको बोलती हूँ फ्रेंड, जो चीजें मैंने की है ना वैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी नोट्स बनाओ, ऐसे सत्संग ऐसे मत सुनो, भगवदगीता को ऐसे मत सुनो कि ऐसे बहुत ईजी आपको अगर ये चीज मिली है। तो मैं वही बोलती हूँ कि अगर भगवान ने हमें चुना है, अपना बोलूं तो सच में मेरे को यही एक्सपीरियंस होता है कि भगवान चुनते हैं अपने डिवोटीज को, उनको पता है कि कौन सा बच्चा उनका चलने वाला है, तो वो उन्हीं को चुनते हैं, उन्हीं को ये ज्ञान मिलता है, सबको नहीं मिलेगा, सब उलझे पड़े हैं, ऐसे कैसे कि किसी को मिल गया ज्ञान और किसी को नहीं मिला। भगवान ने खुद ही भगवद गीता के एक श्लोक आएगा आगे, उसमें बताएंगे कि कुछ लोग मेरे रास्ते में चलते हैं, है ना, और उन लोगों में से कोई विरला ही है जो मुझे जान पाएगा, है ना। तो भगवत गीता भी देखो 3 तरह से लोग पढ़ते हैं, एक तो होते हैं ना, आपको भी मिलते होंगे ऐसे लोग जो बोलते हैं मैंने 4 बार पढ़ी है, मैंने 5 बार पढ़ी है, लेकिन उनकी बातों से उनके जीवन से आपको भगवत गीता की कोई महक नहीं मिलेगी, है ना, दूसरे होते हैं कि जिनको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है ना कि हाँ मुझे भगवद गीता समझ आ गई, ठीक है भाई नॉलेज मिल गई मुझे, है ना ज्ञान मिल गया बस खाली, है ना समझ आ गई है, समझ तक पहुंच गए वो। और तीसरा जो गिने चुने लोग होते हैं फ्रेंड, जो एक्चुअली भगवद गीता को जीते हैं, जो भगवान की लर्निंग्स को, जो भगवान बता रहे हैं हमें, उस लाइफ को फॉलो करते हैं, है ना, ऐसे लोग बहुत गिने चुने हैं फ्रेंड्स, है ना। तो हमें भगवान के वो वाले डिवोटी बनना है कि अर्जुन ने भगवद गीता का ज्ञान लिया और उस रास्ते पे चला और वो जीता, तो हमें भी भगवान के रास्ते पे चलना और जीत के दिखाना है ना। तो ये विजडम है, ये ज्ञान नहीं होगा सिर्फ, फिर ये विजडम बन जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, अब भजन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत लेट हो गए हम। किरण जी आज आपकी भजन की टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरि बोल।
दो लाइनें बोलना चाहती हूँ।
हाँ जी बोल लो।
मोना जी, आज आपने स्पिरिचुअलिटी के 4 पिलर्स के लिए बता रहे थे, सत्संग के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी तरह से, आप हमेशा ही हर चीज को बड़ी डीपली हमें समझाते हो। तो सत्संग मीन्स क्या है? सत मीन्स ट्रुथ और संग मीन्स एसोसिएशन। अगर हम अच्छी सोल के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। जैसे मोना जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी भी स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे हमने आपके साथ 2 रीडिंग कंप्लीट की तो हमारी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ी है। और 4 पिलर्स क्या मींस है इसका, कि हमें प्रभु के साथ अपना कनेक्शन बनाना है और हमें सेल्फ रियलाइजेशन भी करना है। ये हमने सीखा आपसे कि हमें प्रभु के साथ अपना कनेक्शन बनाना है और अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा है और भगवान जो है वो परमात्मा है और हमें परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। और सत्संग में जैसे बोलते हैं ना कि सत्संग वो जगह है जिसके जहां हम प्रभु की बातें करते हैं, वो सत्संग है और यही सब लाइफ का एक सत्य है। और जैसे इसके आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है, जैसे हमारे मन में, हर के मन में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं, मेरे साथ तो ये बहुत ही बार हुआ कि मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन आता था तो मेरे को सत्संग में उसका आंसर मिलता है। लेकिन आंसर देता कौन है? सबसे बड़े गुरु भगवान कृष्ण है और वो भगवान जो है परमात्मा हमारे अंदर है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि परमात्मा, हम आत्मा है और परम पिता जो है परमात्मा है, वो हमारे अंदर है। और बहुत से मिसकंसेप्शन होते हैं, वो हमारे सत्संग से ही दूर होते हैं। जो कुछ हमने, आपने हमें सिखाया, उसको हमने लाइफ में उतारा तो हमारे बहुत से मिथ्स दूर हुए। बहुत से होता ना कि ऐसे क्यों है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मिथ्स बहुत ज्यादा थे, वो सारे सत्संग सुनने से ही हमारे दूर हुए और हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी बढ़ी है। हम डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन के रास्ते पर चले हैं। ये अर्जुन जो है हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम सब का भी अलग अलग कुरुक्षेत्र है। भगवद गीता इसमें हमारी हेल्प करती है कुरुक्षेत्र से निकलने में और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाती है। लेकिन ये ज्ञान हमें कहाँ मिला? ये ज्ञान हमें सत्संग सुनने से ही मिला। इसके लिए मैं आपका लाखों करोड़ों बार भी थैंक्स करूं तो वो भी कम है, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारी लिसनिंग पावर भी बड़ी डेवलप होती है। क्योंकि अगर मैं आपका सत्संग ध्यान से नहीं सुनूंगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बता रहे थे। मैं ध्यान से सुनूंगी तभी मैं रिव्यूज दे पाऊंगी, तभी मेरे को समझ आएगी आपने क्या बताया, इसका मतलब क्या है। तो मैं अब आप पूछोगे कि रिव्यूज दो कि आपने क्या सीखा, तो आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको बता पाएंगे ना। इससे हमारी लिसनिंग पावर जो है बहुत डेवलप होती है और ध्यान से हम सुनते हैं, रिव्यूज देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है सत्संग से। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स मोना जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज मम्मा। मैंने आपको कल भी कहा था कि आजकल साप में बहुत प्रोग्रेस हुई है, रिव्यूज में, समझने में, बोलने में, भजन में, सब लोगों में। एक्चुअली मैंने देखा कि जो पुराने हमारे लोग हैं उनमें सब में समझने का लेवल बढ़ा है, मतलब जो भजन गा रहे हैं वो भजन बहुत अच्छा गाने लग गए हैं, है ना। तो कितना कुछ सीखा हमने एक बात है सत्संग से, है ना। मैं अपनी बात करूं तो बात करने नहीं आती थी मैं, बिल्कुल भी जैसे बोलते हो इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, बहुत कम बात करना, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाना, है ना, इस तरह की थी। तो अब मैं अपनी बात रख पाती हूँ सब में, मतलब फिजिकली भी और आपके साथ भी भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं, है ना, और पॉडकास्ट हम मैनेज करते हैं, सत्संग मैनेज करते हैं, तो कितना कुछ सीख रहे हैं हम, है ना, घर बैठे बैठे, मतलब ये सीखते हैं कि सब चीजों को कैसे बेस्ट वे में करना है। जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मैं ये सत्संग, अपना सत्संग है हमारा स्पिरिचुअल लर्निंग, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे अच्छे लेवल पे लेके जाना है, है ना, उसकी कैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, मैं कैसे नई चीजें ऐड कर सकती हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि यार मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, इस चीज में मैं कर सकती हूँ। तो सब सारी चीजें हम सत्संग से सीख रहे हैं, है ना। मटेरियल नॉलेज लेने के लिए भी तो हम कितना टाइम लगाते हैं फ्रेंड्स, है ना, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम टाइम नहीं लगाना चाहते, है ना। वो स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी कैसे? सत्संग से, सिंपल बात है। चाहे हम फोन के माध्यम से करें, चाहे वो हम बुक्स के माध्यम से करें, चाहे वन टू वन फिजिकली जो हमारे गुरु होते हैं उनके माध्यम से करें, है ना। मतलब वह कि उस नॉलेज को हम लें और उसको यूज भी करें फ्रेंड, ये नहीं कि बस मिल गई है। नॉलेज तो हमें बहुत होती है ना, हमारे गुरु जी ने हमें बहुत कुछ बोला होता है करने को, लेकिन हम करते हैं क्या, है ना, इसलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है। फिर हमने करना कुछ नहीं है, लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमारे गुरु होने चाहिए, हमारे ये होने चाहिए, अगर गुरु नहीं होंगे तो लोग, ये मिथ होते हैं कि गुरु नहीं होंगे तो गति नहीं होगी, है ना। तो भगवान ने क्लियरली, अगले श्लोक आएंगे उसमें लिखा है कि भाई भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर, है ना। तो फिलहाल चलो आपके पास फिजिकली कोई गुरु नहीं है, तो आप फिलहाल भगवान कृष्णा को अपने गुरु बना लो, भगवत गीता को अपना गुरु बना लो, और जब आपको फिजिकली कोई गुरु मिलेंगे तो आप उनको भी अपना लो, है ना। फिलहाल हमें जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, उनको ग्रैब करते जाना, ये नहीं कि फालतू चीजों में पड़े हुए हैं और ये जो चीजें हाथ में जो आ रही है प्रेजेंट मोमेंट को हम खो देते हैं फिर, है ना। थैंक यू सो मच मम्मा। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अब हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। किरण जी, आज आपके भजन की टर्न, आप भजन गा सकते हो। हरि बोल।
आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा था, इतना इनर पीस देने वाला था, सत्संग। आपने आज सत्संग का टॉपिक करवाया हमें, तो सत्संग, सत्य का संग। तो मेरे को पहले यही नॉलेज नहीं थी। हाँ जी, हरी सत्य है। हरी सत्य कैसे है भाई? मैं सोच रही थी सब कुछ तो सत्य है, जो हम देखते हैं ये सच्चाई तो है। अब सत्संग सुनना, भागवत गीता का स्टूडेंट बनी हो तो मेरे को ये समझ आई है कि हरी ही सत्य है, हरी के बिना हम कुछ नहीं है, सब कुछ नश्वर है, एक हरी ही रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो क्यों हम माया के पीछे दौड़ते हैं, तो मायापति के पीछे क्यों ना दौड़े? तो जैसे आप बताते थे, पहले हम फर्स्ट प्योरिटी भगवान को नहीं रखते हैं, लास्ट रखते थे, ऑप्शनल। तो अब भी फर्स्ट प्योरिटी भगवान जी हो गए हैं। सत्संग से, इस सत्संग सुनने से इतना प्रभाव पड़ता है ना हम पे, मुझ पे बहुत। तो मैं दिन भर ये, हमें सत्संग सुनना ही नहीं है। आप कहते हो ना कि उसको अपने बारे में देखना है, मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे खुद को सुधारना है, तो मैं सत्संग सुन के फिर उसको दिन भर सोचती हूँ कि आज ये सिखाया, वो सिखाया। अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, भाई मोना दी बोल रहे थे सत्संग के माध्यम से कि ये करो, खाना बनाना तो ऐसे बनाना है, प्रसाद समझ के बनाना है, उससे इनर पीस आता है। जो खाते हैं वो भी शांत रहती है और मैं भी शांत रहती हूँ सत्संग के माध्यम से। सत्संग एक घंटा हमने हरी की बातें कर ली तो ये सत्संग है। पहले सत्संग में जाती थी, बहुत सत्संग जाती थी मैं, बट वही दूसरों के कुछ भी कपड़े देखने, बातें सुननी, तो सारा जो गांव है, जो सिटी है, जहां भी हम सत्संग जाते हैं, तो उनका बस ये पकड़ के आ जाना, वो ऐसा वो ऐसा। जब से मैंने घर में सत्संग किया, सुनना शुरू किया, तो मैं समझती हूँ सत्संग है भाई, हरि की चर्चा मेरे दिमाग में चलती है। पहले सत्संग तो होके आते थे जब, तो चर्चा ये चलती थी बस, भाई वो औरत नहीं अच्छी, उसने ये कहा, उसने कैसे गाया, ये नहीं अच्छा था, वो नहीं, अरे अभी वो सब खत्म हो गया। अभी ये कि नहीं, हरी की बातें चल रही है, हरी ही सत्य, उससे इनर पीस मिलती है, मुझे आत्म शांति मिलती है। फिर जब कोई काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, जो कुछ भी काम कर रही होती है, तो मेरे मन में होता है भाई सत्संग ने ये बताया ऐसे करना है। तो हरी को मैं प्रेजेंट मानती हूँ हर टाइम, कोई भी वो सिचुएशन आती है तो स्टेबल रहती है तो, बट हरी को मैं कहती हूँ। कोई भी कुछ मेरे को कहता है कि देखो क्या हो गया, जहाँ कोई भी अपनी सिचुएशन रहता है, मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं भाई, हरी है ना बैठे हुए, कोई बात नहीं, हरी बैठे हुए हैं। तो सच में मैं तो कहती हूँ मैं हरी के मंदिर में रही, और ये सब चेंजेस सत्संग से आया, आपके सत्संग से नहीं, भागवत गीता के सत्संग से, जो आपके माध्यम से हम सुनते हैं। और मैं अब भजन की ओर बढ़ती हूँ। आज का भजन है, एक भगत अपने भगवान से फरियाद कर रहा है कि मेरा मन रूपी दुपट्टा है जो अपने रंग में रंग दो। रंग दे ललारिया, रंग दे ललारिया, दुपट्टा मेरा रंग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मन दा दुपट्टा मेरा हो गया पुराना, राम नाम वाला रंग इस ते चढ़ाना, मन दा दुपट्टा मेरा हो गया पुराना, राम नाम वाला रंग इसते चढ़ाना, छेती छेती रंग देते, छेती छेती रंग देते, किली नाल टंग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, हरि दे प्रेमिया ने प्रभु दे प्रेमिया ने सत्संग लाया है, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया है, मैं भी उड़ी फिरा देखो बन के पतंग वे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, उच्चिया नसीबा वाले, उच्चिया नसीबा वाले सत्संग जाम दे, मंगिया मुरादा मेरे हरि कोल पाम दे, मंगिया मुरादा मेरे प्रभु कोल पाम दे, छेती छेती रंग देते किली नाल टंग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, हरि दे प्रेम दिया प्रभु दे प्रेम दिया गल्लां ने निरालिया, ओके वेले दुनिया दे कम आने वालिया, ओके वेले दुनिया दे कम आने वालिया, मैं भी देखो बिच बैठा हो के मगन वे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दिल लारिया, रंग दिल लारिया, दुपट्टा मेरा रंग दे, मैं भी देखा बैठ के नजारे सत्संग दे, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल भजन गाया किरण जी आपने, और आज के टॉपिक से रिलेटेड था, सत्संग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा
हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल, घर घर मंदिर,
हर घर मंदिर,
जय श्री कृष्णा,
जय श्री कृष्णा।